أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
مساك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج 21ویں پارے میں ہمارے لیے کیا ہے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 23 23ویں دن کا آغاز کریں گے. اور آج کا ہمارا گول 21واں پارہ ہے، جو کہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا پارے کا تعارف کروا دوں. آج کے اس پورے پارے میں سے جو نقطہ ہم نوٹ کریں گے وہ ہے لہو الحدیث کا ہماری عملی زندگی پر اثر. دیکھا جائے تو کچھ عرصہ پہلے ہم اتنے مصروف نہیں تھے، حالانکہ کام کرنے کے لیے اتنی مشینیں نہیں تھیں اور اتنی سہولتیں نہیں تھیں جو آج نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہوئی کہ وہ چیزیں جو ہمیں مزید اللہ سے قریب اور دنیا کے لیے فائدہ مند بنانے کا ذریعہ بن سکتی تھی، اس کو لوگوں نے ٹائم کلنگ کا ذریعہ بنا لیا، صرف وقت گزاری کا سامان بنایا. پہلی ہی آیت ہے اور خاص طور پہ سورۃ لقمان کی کچھ آیات پہ اس پہ بات ہوگی. ہم اس کا اثر کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نماز اور لہو الحدیث کا تعلق کیا ہے، بالکل پہلی ہی آیت کی روشنی میں. پھر جو دوسری ایک اہم چیز ہم آج کے اس بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کب ہوتا ہے؟ جب اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ہماری آج کی تمام انوینشن اور گیجٹس بھی آ جائیں گے. پھر اگلی چیز جو ہم اس میں دیکھیں گے کہ پہلے دور کے لوگ اتنے فوکسڈ کیوں تھے، کیونکہ لہو الحدیث کے طور پر اتنی ڈسٹریکشنز نہیں تھی ان کی زندگی میں کہ وہ اپنی زندگی کو بیکار ضائع کر دیتے. پھر اس کے بعد ہم اس میں خاص طور پہ جو آج چیز دیکھیں گے وہ بچوں کی تربیت. हम अपने बच्चों की जिंदगी से लाहवल हदीस को निकालकर उनके हाथों में अल्लाह का कुरान कैसे दें। तरबियत के कुछ अमली नुक्तों पर इंशाअल्लाह सूरत लुकमान की रोशनी में बात होगी और इसी तरह से फिर हम देखते ही जाएंगे कि कल के दुश्मन तो मुसलमानों की सरहदों पे अपनी फौजें लेकर आ जाते थे, सूरत अहज़ाब में इसकी डिटेल्स आ रही हैं। आज के दुश्मन जहनी सरहदों पे हमले करते हुए जिंदगी को इतना मसरूफ कर रहे हैं, सोच के सारे दरवाजे बंद होते हुए दिखते हैं कि ये सोचने का वक्त ही कम लोगों के पास है कि अल्लाह ताला हमें किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजता है और हम इस दुनिया में रहकर करें क्या। और ख़ास तौर पे इसमें फिर हम देखेंगे कि जब जिंदगी से लाहवल हदीस निकलता है तो रातों को जागना आसान हो जाता है। तत्जा फजनूब हम अनिल मदाजे, बहुत बड़े बड़े ख़जाने हैं इस बारे में भी। कुरान पाक की खूबसूरत सूरतें सूरत लुकमान, सूरत सजदा, सूरत रोम और इसी तरह से सूरत अल अहज़ाब और कुछ हिस्सा सूरत अल अनकबूत का। आइए इस दुआ के साथ पढ़ते हैं कि इस वक्त भी कोई ऐसी चीज़ हमारे इर्द गिर्द ना हो जो हमें इस प्यारे कलाम के मोती चुनने से महरूम कर दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون। ए नबी, तिलावत कीजिए इस किताब की जो आपकी तरफ वही के जरिए से भेजी गई, और नमाज कायम करो, यकीनन नमाज फुखश और बुराई से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी बड़ी चीज है और अल्लाह को खूब मालूम है जो वो कर रहे हैं, या अल्लाह खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम के साथ पारे का आगाज़ है। सबसे पहली बात, नबी सल्लम से कहा गया कि ये जो कलाम आप पे नाजिल हो रहा है अब यह पढ़कर सुनाइए। क्यों? इसलिए कि कुरान का मिजाज सुनने वाला है। लिखी हुई चीज़ की एक अपनी तासीर होती है और पढ़ी हुई चीज़ की अपनी तासीर होती है। आप इसको दिन रात देखते होंगे कि कई किताबें आपके घरों में तफसीर की सूरत में मौजूद थी, लेकिन कुरान की तफसीर सुनने से जो दिल की हालत बदलती है वो पढ़ने से नहीं बदलती। तो वो सब साथी जो ये कहते हैं कि हमारे घरों में बहुत सी तफसीरें हैं और हम वो पढ़ते हैं, उनके लिए शायद में लम्हा फिक्रिया है। अगर अल्लाह ताला जिब्राइल के ज़रिए से इस किताब को पूरे का पूरा इसी तरह भेज देता और नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से लोगों तक ना पहुंचती, तो याद रखिए ना तो तस्किया होना था ना तरबियत होनी थी, और सुनाने के लिए उस्ताद चाहिए होता है। किताब लिखी हुई है, वो पढ़ सकते हैं आप खुद। जो लोग किताब पढ़ कर इल्म हासिल करते हैं ना, उनमें आजजी नहीं आती। जो किसी उस्ताद के ज़रिए से हासिल करते हैं उससे आजजी आती है। दूसरी बात है, जो किताब पढ़ कर इल्म हासिल करते हैं उनको यकीन नहीं होता। एक किताब पढ़ेंगे एक सोच बनेगी, दूसरी किताब उठाएंगे दूसरी सोच बनेगी। तो दूसरा काम जो उस्ताद के ज़रिए से होता है वो यकीन मिलता है। आप कह लें कि इल्मुल यकीन हासिल ही उसको होता है जो पूरी आजजी के साथ किसी एक ऐसे शख्स का इंतखाब करे जो उसके पूरे गुमान के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की बात करने वाला, अकीदा सही है, अमल की हर मुमकिन कोशिश है, ना बात को अपनी तरफ से बढ़ाता ना कम करता है, जिस रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अल्लाह ताला ने ये कुरान दिया और जो हदीस थी उसी को पेश करता है, तो ऐसे ही लोग दुनिया में बेहतरीन कामयाब होते हुए दिखे गए। दूसरी बात देखिए कि यहाँ जो बात आई है वो है अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। हर दीन की बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह पहली ईंट हुई और दूसरी ईंट अकीमिस्सलाह। हर दीन में नमाज थी, उसकी तरतीब फ़र्क थी, उसकी रकात फ़र्क हो सकती हैं, और यहाँ बता दिया कि असल बात यह है कि नमाज तुम्हारी रूह की ग़िज़ा है। आज लोगों ने एक जुमला बना दिया जो इस बारे में आप बार बार ही सुनेंगे, मसीकी रूह की ग़िज़ा या म्यूजिक इज द फूड फॉर सोल। अल्लाह ताला पहली आयत में मुझे आपको अपनी इस्लाह की दावत देते हैं कि अगर कहना है तो कह दो कि सलात इज द फूड ऑफ द सोल। नमाज के बाद इंसान अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करता है, एक रूहानियत महसूस करता है, और हदीस में आता है कि जब इंसान अल्लाह की तस्बीह करता है तो ये तस्बीह ऊपर उठती है और अर्श के गिर जाकर चक्कर लगाती है। और आप देखें पूरी नमाज कैसे जिक्र और तस्बीहात से भरी होती है। फिर इसी तरह से एक और चीज़ ज़हन में रखिए कि यहाँ नमाज का इफ़ेक्ट, आफ्टर इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सलात क्या है। इन सलात तन्हा अनिल फ़ख्शाई वल मुनकर। चंद सेकंड में और आप इस पर गौर करें, क्या मैं नमाज पढ़ती हूँ? मेरा आप सब के बारे में गुमान है, आप सब कहेंगे जी पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 100 नंबर मिल गया आपको इस पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फिर मेरी जिंदगी से फोहश और मुनकर निकल गया? इस पे सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स हकीकी तौर पे नमाजी भी हो और उसकी जिंदगी में फोहश और मुनकर भी हो। जैसे हर दवा का एक असर होता है, दवा खाएंगे तो असर जरूर होगा। आप दवा खाते हैं और असर नहीं हो रहा, आखिर परेशान होकर किसी जानने वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं ये बता आलू तो नहीं खाती, भिंडी तो नहीं खाती और दूध तो नहीं ज्यादा पीती। हाँ ये तो है, अच्छा ये दवा इन चीजों की बदपरहेजी की वजह से काम नहीं करती। याद रखिएगा, लिख लीजिए, आज दुनिया में करोड़ों मुसलमान नमाजी हैं बट बहुत थोड़े हैं जो फुहश और मुनकर से रुके हुए। आज का पूरा पारा आपको मुझे इस बात पे माइल करेगा और मुझे आपको आज आज के इस पारे के दौरान बार बार खुद को ये मैसेज देना है कि मेरी जिंदगी फुहश और मुनकर में कहाँ है। क्या है फुहश? हर वो चीज जो दुनिया में गुनाह फैलाती है। गाली देना फुहश है, टाइम को जाया करना फुहश है। और मुनकर क्या? जिसका तबीयत इनकार करे। मुनकर क्या है कि जिसको एक इंसान अपनी जिंदगी में लाए तो उसकी जिंदगी बेकारियत पे चल पड़े। तो अपने लिए क्राइटेरियन बनाइए, अगर नमाज के बाद दिल से गुनाह और फुहश की मोहब्बत कम हो रही है तो नमाज काम कर रही है। वरना ये कभी नहीं हो सकता कि लोगों को मुंह से कहना पड़े वैसे मैं हूं 5 वक्त की नमाजी, लेकिन ये अलग बात है दिखता नहीं है। वैसे मैं अंदर से बहुत नेक हूं लेकिन ये अलग बात है मेरा हाल हुलिया इसका सबूत नहीं देता। मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए समझा रही हूं। फुहश में अगर हम गलत ड्रेसिंग को लें, रॉन्ग ड्रेसिंग, बताइए जिस सिस्टर ने 5 दफा नमाज पढ़नी है और उसको नमाज का एक खास क्राइटेरियन पता है कि सर से पांव की उंगलियां तक छुपना लाजिम होता है, चेहरे और मुंह ये कलाई तक खोलने की इजाजत है नमाज में, हत्ता के पांव के टॉप को भी छुपाना होता है। अब जो सिस्टर 5 वक्त ये नमाज पढ़ती है, वो स्कूल जाती है, वो कॉलेज जाती है, वो जॉब करती है, वो घर में, क्या वो घर से निकलते एक सर से पांव तक खुद को नहीं देखेगी? क्या मेरे इस हाल हुलिये में मैं नमाज अदा कर सकती हूँ? याद रखिए, हमारे कपड़े हमारी नमाज के खुशू खुदू में बड़े अहम होते हैं। अगर आप रुकू में जाते हुए पीछे से कमीज खींच रहे हैं क्योंकि पीठ ही ना नंगी हो जाए, और सीधे हो रहे हैं तो आगे से पेट दोबारा कवर करने की कोशिश में, और बार बार आपका सर का स्काफ आपके गर्दन से लिपटा हुआ आपका सीना और आपके बाजू खोल रहा है, तो ऐसी नमाज फिर फुहश और मुनकर से नहीं रोकती। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी नमाजों को जिंदा करें। और याद रखें, जिस सोसाइटी में 5 वक्त के नमाजी होंगे वहां मुनकर और फुहश नहीं होगा। सहाबे कराम को आप देखिए तो नमाजें मैदाने जंग में भी उनकी नहीं छुटती थी, और उनका हाल यह था कि वो बिस्तरों की करवटों से अलग रहते थे, उनको नमाज से इतनी मोहब्बत थी, उसका असर बहुत था। अल्लाह से दुआ करते हैं कि नमाजों का असर हो। और याद रखिए, वही दवा खाने को और कंटिन्यू करने को दिल चाहता है जिसकी तासीर हम महसूस करें। नमाज अगर अच्छी होगी ना तो अगली नमाज पढ़ने को खुद ही दिल चाहेगा। अल्लाह ताला मेरी आपकी नमाजों को बेहतरीन शक्ल में ढाल दे। और याद रखिएगा कि सूरत अनकबूत चल रही है, आजमाइशों की सूरत, मुश्किलात में क्या करना है। आज हम आमतौर पर ये बातें तो बहुत करते हैं कि इस्लाम 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 पे हमले, इस्लाम पे बातें, उसकी वजह क्या है? क्या आज फुहश और मुनकर का रास्ता ऐसा रास्ता है कि जिसके रास्ते शैतान ने और दुश्मन ने हमें इतना परेशान कर दिया कि उसको हमारी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजों को लाने की जरूरत ही नहीं पेश आती? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी नमाजों की फिक्र लगा दे। फरमाया वला तुजादिलु अहलल किताबि इल्ला बिल्लती ही अहसन, और अहले किताब से बहस ना किया करो मगर उम्दा तरीके से। नोट कीजिए, अव्वल तो बहस करनी नहीं है, करनी पड़े मुहज्जब तरीके से, डिसेंट तरीके से, बदतमीज नहीं होना, अगले के ऊपर हमला नहीं करना, प्यार से अगले की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर दीन की दावत दो, सिवाय उन लोगों के जो इनमें से सालिम हो, और इनसे कहो कि हम भी मान लाए इस चीज पर भी जो हमारी तरफ भेजी गई और उस चीज पर भी जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी, हमारा रब और तुम्हारा रब एक ही है और हम उसी के मुस्लिम फरमा बरदार हैं। नोट करें, कॉमन ग्राउंड्स पे बात करें। दावा का बेहतरीन नुकता तालवीला कलिमत सवाम बैना ना बैना को, ए नबी हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है, इसलिए वो लोग के जिनको हमने पहले किताब दी थी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयात का इनकार सिर्फ काफिर ही करते हैं। ए नबी, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, न अपने हाथ से लिखते थे, यानी हमारे नबी पढ़े लिखे नहीं थे। हर उस बंदे के लिए ये बात एक हुज्जत है जो ये कहकर दीन की महफिलों से दूर रहता है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अल्लाह के नबी पढ़े लिखे नहीं थे। फिर कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हो गए, तो याद रखिए अल्लाह के नबी का दीनी सफर 40 साल की उम्र में शुरू हुआ था। इकरा बिस्मी रब्बिक अल्लज़ी खलक, तो पढ़ा लिखा ना होना या ज्यादा उम्र का होना ये कोई हुज्जत नहीं है। आप जहां खड़े हैं वहीं से सफर शुरू कर दीजिए, अल्लाह की शान है कि वो आपके लिए बाकी काज चीजों को आसान कर देगा। फरमाया अगर ऐसा होता तो बातिल प्रस्त लोग शक में पड़ सकते थे, दरअसल ये रोशन निशानियां हैं इन लोगों के दिलों में जिन्हें इल्म बख्शा गया है। हाईलाइट करें, इल्म एक रोशनी है और इल्म दिलों को रोशन करता है। कुरान की हर आयत आपके दिल को चमका रही है, आपके दिल के बर्तन को साफ कर रही है, और एक वक्त आएगा कि आपका दिल इतना साफ और चमकने लगेगा कि अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्द की सूरत में मसल नूरी ही का मिशकात, क्या आपका दिल एक मिशकात बनेगा, एक ताकचा बनेगा, उसमें इल्म का पानी जितना पड़ेगा उतना रिफ्लेक्ट करेगा, लोग आपके उस इल्म से कशिश महसूस करके आपके करीब होंगे। लेकिन गंदे दिल में और धुंधले बर्तन में इल्म का जितना मर्जी पानी डाल दीजिए वो कोई फायदे की चीज नहीं बनता। और हमारी आयात का इनकार नहीं करते मगर वो जो जालिम है वो लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियां इसके रब की तरफ से। देखिए शक पैदा करने वाली बात है, कहो निशानियां तो अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर। अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की है जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। दो बातें नोट करें, कुरान की निशानी और कुरान का मौजज़ा जिसको नहीं दिखता और जो इसको पढ़ के और इसको समझ कर हिदायत पे ना आया फिर वो कोई मौजज़ा भी देखेगा ईमान नहीं कबूल करेगा, हिदायत पे नहीं आएगा। और दूसरी बात पढ़कर सुनाई, जो बात पहला लफ्ज़ उत्लुमा होगी या वही यहाँ है, तो कुरान को सुनने का एहतमाम करें। पढ़ पढ़ कर घर बैठ कर बहुत सारे लोगों ने इल्म हासिल किया, कुंद छुरियाँ बन गए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल यहाँ देती हूँ फायदे की खातिर। एक वो पौधा होता है जो खुदरा तौर पर खुद ही उग गया, कहीं बीज पड़ा कहीं बारिश हुई हुआ चल पड़ा, सड़क के किनारे झाड़ झंकार है। जो पौधे खुद उग जाते हैं दरख्तों के किनारे झाड़ियों की सूरत में झंकार की सूरत में वो क्या करते हैं, आने जाने वालों के कपड़े फाड़ेंगे। इसके बरक्स कुछ पौधे हैं जो एक बाग में एक माली की कस्टडी में उगते हैं, उसकी झाड़ झंकार भी करेगा, काटेगा, उसको पानी देगा, उसके पत्तों को साफ करेगा, वो क्या होगा, आंखों को भी खूबसूरत लगेंगे और सोसाइटी को ऑक्सीजन भी देंगे। वो लोग जो खुद किताबें पढ़ पढ़ा कर अपने आप को बहुत नेक समझने लगते हैं वो खुदरो पौधे हैं। पता ही नहीं ट्रिम कहाँ से करना है, ये उस्ताद का काम होता है, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे चलना है, कैसे खाना है। याद रखिए तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है। तालीम क्या है, इल्म हासिल करना, आपने कर लिया, आप गए आपने किताब खोली आपको इल्म मिल गया। तालीम किताबों से मिल सकती है, सख्ती से मिल सकती है, बट तरबियत करने के लिए आपको किसी के हाथों की ज़रूरत होती है। जैसे कह लीजिए कि हीरा जब निकलता है अंदर से तो कोयला होता है, फिर किसी जौहरी के हाथ लगते हैं तो उसको ऐसे गाड़ता है कि वो डायमंड में बदल जाता है। तो लिहाजा वो पौधा बन के दुनिया में हमने दीन को लेकर निकलना है कि जो लोगों की राहत का जरिया हो, वरना जहां बैठे फतवे, जिधर बैठे तनकीद, जिधर बैठे हलाल ये हराम, कोई पूछे ना पूछे, हर जगह आपको आलिम बनने का शौक है, मुफ्ती बनने का शौक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये किताब पढ़कर सुनाई जाने वाली किताब है। दर हकीकत इसमें रहमत है और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। दुआ कीजिए हमें इसे नसीहत मिल जाए, हमारे लिए ये किताब रहमत की किताब बन जाए। शर्त क्या है, ईमान, ईमान और ईमान। ईमान के बगैर बाकी काम बेकार है। आप देखिए ईमान ऐसे जैसे आप किसी कॉलेज में दाखला लेते हैं, जब आप दाखला ले लेते हैं ना फिर आप दिन रात वहां पढ़ें जाएं, आपकी रोल कॉल होगी। कभी आपने दुनिया का कोई ऐसा स्कूल देखा जिसका दिल करता है आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, कोई रोल कॉल नहीं, कोई किताब नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई नहीं, जो आज होंगे उनको पढ़ा देंगे, कल जो आएंगे उनको पढ़ा देंगे, जो नहीं आए पता नहीं किधर है, उनका तो कोई नंबर ही पास नहीं है। दुनिया में कभी कोई छोटे से छोटा स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी ससूल पे चल सकता है? ये सब क्यों करते हैं लोग, कि इससे आपकी संजीदगी दिखती है। इससे ये तो पता होता है कि आए हर एक, 100 लोग आ जाए बट 10 वो हों कि जिनको पूछा भी जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से याद रखें कि ईमान ऐसे ही है जैसे आपने इस्लाम के इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। अल्लाह ने कयामत के दिन सिर्फ उनको पूछना है जो ईमान लाए थे। आप कहेंगे क्या आपने गलत नहीं बोल दिया, हम तो आज तक इस खुशफहमी में थे कि अल्लाह ने पूछना है काफरों को। नहीं, सूरत काहफ में पढ़ चुके हैं, फला नकीम लहुम यौमल क़ियामती वज़ना, काफरों के लिए तो हम तराजू ही नहीं रखेंगे। वो तो बिला मुकाबला फेल है, उन्होंने तो अल्लाह से कोई वादा ही नहीं किया, उन्होंने तो कोई उम्मीद नहीं दिलाई कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। या का नाबुदू या का नस्तईन, तो ईमान वाला पढ़ता है सिराते मुस्तकीम की दुआएं, तो ईमान वाला करता है। तो याद रखिए क़यामत के दिन सबसे कड़ा हिसाब ईमान वालों का होगा। कुछ को तो अल्लाह बगैर मुकाबले के फेल, ऐसे ही है कोई उस्ताद उन्हीं शागिर्दों को पूछता है जिन्होंने कहा होता है कि हमें पढ़ाएं, ये ले हमारी कमिटमेंट, ये पकड़े हमारे नाम, ये देखें हम किताबें ले रहे हैं, ये देखें हमारा अटेंडेंस शीट में नाम लिखें, ये हम सारी लाइबिलिटीज मानेंगे। उसको ही पूछा जाता है ना, कोई राह जाता है एक गेस्ट आ जाए, उसको पूछ सकता है कि आप कल क्यों नहीं आए, आपने सबक कल का क्यों नहीं सुनाया। तो याद रखिए बी सीरियस, वी शुड बी सीरियस, दीन के नाम पर भी संजीदगी ही फायदा देगी। 10-10, 15-20-20 साल से मैंने सिस्टर्स को वीकली क्लासेस में जाते देखा है। मैं गवाह हूँ इस बात की, मेरी शादी हुई थी तो एक क्लास चल रही थी, मेरी सास लेती थी उसको। जब मैं गई तो गालिबन वो किस बारे पे थी, और पता ये चला कि 10 साल से क्लास चल रही है, फिर मेरे सामने वो क्लास पूरी हुई। तो बाद में पता चला कि ये क्लास 15 साल में कुरान पूरा हुआ, और जो आखिरी दिन बैठे थे, पहले दिन उनमें से कई पैदा ही नहीं हुए हुए थे, और जिन्होंने वो क्लास शुरू कराई थी उनमें से आधे से ज्यादा अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, और जो बच्चियां थी जवान थी वो मेच्योर, 15 साल में इंसान मेच्योर हो जाता है। क्या मिला एंड पे, क्या मिला ऐसी चीज से? बस ठीक है, गुजारा होता गया, उन्होंने आगे सोसाइटी को दिया क्या? आप ये 15 साल दीजिए किसी ऐसे शख्स को जो ऑर्गेनाइज तरीके से इंजाम को सामने रख के बात करे, तो 15 नहीं तो कम अज कम 10 या 12 कोर्स तो ऑफर किए जा सकते हैं। 12 सेशन आप दे सकते थे इन 15 साल में, हर सेशन में 10 लोग भी निकलते, 100 ना भी निकलते, तो जरब दे लीजिए उसको 10 से। दीन के काम के लिए जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये बीज जो डाल रहे हैं इसे काटना भी है, फसल भी लेनी है, तो ये जिंदगी का असूल बनाइए। इस दौरे कुरान से कम अज कम ये जरूर सोचिए, मैंने एक डिसिप्लिन शख्स बनना है। मेरी जिंदगी में अगर तहजीब नहीं है, मैं वक्त को ख्याल नहीं रखती, मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती, तो मैं नेक हूं, जन्नत भी मिलेगी पर दुनिया में कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सबसे पहले अपने ऊपर इन सारी बातों को लाने वाला बना दे। फिर फरमाया, ए नबी कहो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाही के लिए काफी है, वो आसमानों जमीन में सब कुछ जानता है। जो लोग बातिल को मानते हैं और अल्लाह से कुफर करते हैं वही खसारे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा करते हैं, अगर एक वक्त मुकर्रर ना कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन वो अपने वक्त पर आकर रहेगा। अचानक इस हाल में कि इन्हें खबर भी ना होगी। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने का मुतालबा कर रहे हैं हालांकि जहन्नम इन काफरों को घेरे में ले चुकी है, और इन्हें पता चलेगा उस रोज जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पांव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा इन करतूतों का जो तुम करते थे। जरा सा सोचिए, मैं तो जब ऐसी आयतें पढ़ती हूँ मुझे ओवन याद आ जाता है। आप देखिए कि अमूमन जो ओवन होते हैं उसमें एक ऊपर का बर्नर होता है, एक नीचे का होता है। आम बेकिंग के दौरान आप दोनों ही खोलते हैं, सिर्फ आपको ग्रिल करना है, ऊपर से कुछ चीज़ों को करना है तो ऊपर का जला लेते हैं, कोई चीज़ सिर्फ नीचे से पकानी है तो नीचे से, यहाँ क्या है ऊपर भी है और नीचे भी है। अल्लाह अकबर, फौकहुम व मिन तहति अर्जुलिहिम, दुआ कीजिए कि ये अल्लाह ऊपर नीचे के अजाब से बचा ले। और ये वो चीज़ है कि जो एक इंसान की ज़िंदगी में संजीदगी लाती है। दुआ करें अल्लाह किसी को भी आग का ईंधन न बनाना। ऐ अल्लाह हमें हिदायत का जरिया बना, अपनी भी और दूसरों की भी। इसके बरक्स फरमाया, इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्दी वासियतुन फइय्याया फाबुदून, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो मेरी जमीन वसी है बस तुम मेरी ही बंदगी बजा लाओ। इशारा है कि अगर जमीन के किसी टुकड़े पे तुम्हें दीन पे अमल करना मुहाल नामुमकिन लगे तो पलट जाओ वहां से, दीन ना छोड़ो, वो जगह छोड़ दो। बहुत मुश्किल लगती है हिजरत, तो कहा एक हिजरत तो करनी है हर एक ने, और वो है कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। फिर तुम सब हमारी ही तरफ पलटा दिए जाओगे, ये हिजरत तो नहीं रोक सकेंगे। खड़ी फसलें तैयार हो, औलाद जवान हो, उनकी शादियों का वक्त करीब हो, आपका घर सजा संवरा है, जिस वक्त अल्लाह ने आपको मुझे बुलाना है बीच में से निकल जाएंगे। पिछले चंद महीने पहले एक सुना था वाक्या, बेटे की शादी शाम को बारात है और जोहर और असर के बीच में माँ की डेथ हो गई। वो जो बहू को लाने के ख्वाब देख रही थी, उसने कितने अरमान देखे होंगे अपने बेटे के सर पे सेहरा देखने के, अल्लाह ने हिजरत करा ली। तो याद रखिए, जो मौत को याद रखता है उसके लिए बाकी चीज़ें आसान होती हैं। वल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनको हम जन्नत की बुलंद वाला इमारतों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। क्या ही उम्दा अजर है अमल करने वालों के लिए। इस पे गौर करें, नेम अजरुल आमिलीन, हम क्या कहते हैं, नेम अजरुल ख्वाहिश रखने वाले, दुआएं करने वाले, तमन्नाएं करने वाले तो नहीं। जन्नत मिलती है अमल से, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अमल कौन सा इधर, अल्लज़ीन सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, इन लोगों के लिए जिन्होंने सबर किया और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। क्या पता चला ये कौन सा सबर है, इधर पीछे क्या है। मौत का सबर तो है ही, जिंदगी में अल्लाह की इताअत पे जमते हैं, लाहवल हदीस को, फोहश और मुनकर को अपनी जिंदगी से निकालने का सब्र। टेम्पटिंग होती है, क्रेविंग होती है, खुजली होती है हाथों में, ख़ारिश होती है गलत चीज़ों को देखकर, यानी अंदर कोई बात उछल रही है बस यहाँ तक आके दरमियाने हलक में फंसी भी है, लेकिन नहीं करनी क्योंकि जुबान पे आ गई तो ये मेरे नामे अमाल में चली जाएगी। शौक के साथ इन आयतों की तिलावत सुनते हैं और अपना मुहासबा करेंगे।
يستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون الذين صبروا على ربهم يتوكلون
अल्लाह ताला हमें जन्नतों के काबिल बना दे और वो काम हमसे ले ले कि जो हमें इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह के रजा के मुताबिक काम करने वाला बना दे।